आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द नेकलेस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस चैप्टर की समरी दे देती हूँ और उसके बाद हम चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करना शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, द नेकलेस कहानी है एक बहुत सुंदर लड़की मेटिल्डा की। उसकी शादी एक छोटे यानी गरीब से क्लर्क के साथ हुई थी, लेकिन वो दुखी थी। वह अपने घर की निर्धनता यानी जो उसके घर में पैसों की कमी थी उससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। उसे अपने पति के घर में टेस्टी खाने और बाकी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। एक शाम उसका पति बहुत ही खुश होकर घर लौटा। उसे पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर की ओर से एक इनविटेशन कार्ड मिला था। मेटिल्डा ने अपने पति को कहा कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कोई सुंदर ड्रेस नहीं है। वे उसे एक सुंदर ड्रेस खरीदने के लिए 400 फ्रैंक देने के लिए सहमत हो गया। अब मेटिल्डा की पोशाक यानी उसके कपड़े तैयार थे। फिर उसने शिकायत की कि पार्टी में पहनने के लिए उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, यानी उसके पास कोई गहने नहीं थे। उसके पति ने उसे उसकी जो धनी सहेली थी जिसके पास बहुत पैसा था, मैडम फॉरेस्टर से कोई गहने उधार लेने की सलाह दी। उसने मैडम फॉरेस्टियर से एक हार उधार ले लिया। डांस पार्टी का दिन आ गया। वो पार्टी में पूरी तरह से सफल रही। देर रात को वह अपने पति के साथ घर लौटी। अपने आप को उस शान शौकत में देखने के लिए वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। अचानक ही वो चीख पड़ी। हार उसके गले में नहीं था। उसके पति ने हार तलाशने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उन्हें एक दुकान में हीरो का वैसा ही हार दिखाई दिया। इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी, लेकिन वे उसे 36,000 फ्रैंक में मिल गया। ऐसा करने के लिए उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ा। अब मेटिल्डा और उसका पति भारी कर्जे में थे। उन्होंने नौकरानी को निकाल दिया। उन्होंने अपना रहने का स्थान यानी रहने की जगह भी बदल ली। अब घर के सारे कामकाज मेटिल्डा खुद अपने हाथों से करने लगी और उसके पति ने भी शाम के समय कोई और काम करना शुरू कर दिया। सारे कर्जे को चुकाने में उन्हें 10 साल का समय लगा। एक दिन मेटिल्डा अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से मिली, उसे पूरी कहानी बताई। तभी मैडम फॉरेस्टियर ने मेटिल्डा को बताया कि उसका हार नकली था। इसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी पेज नंबर 39 पर आइए। चैप्टर 7, द नेकलेस। मेटिल्डा is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? Matilda ko ek grand party ka nimantran mila tha. Uske paas ek bahut sundar dress to thi, lekin pehenne ke liye koi bhi gehna nahi tha. To उसने अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस उधार पर ले लिया और उसे उसने खो दिया। आगे क्या हुआ वो हम स्टोरी में जानेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयसिल? व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? लॉयसल किस तरह के पर्सन थी और वो हमेशा दुखी क्यों थी। सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड किस तरह का इंसान था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। शी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो उन सुंदर जवान औरतों में से एक थी जो भाग्य की गलती से एक क्लर्क परिवार में जन्मी थी। उसके पास ना कोई दहेज था, ना आशाएं और ना ही अपनी पहचान बनाने का कोई साधन था, ना प्यार पाने का और किसी धनी या फिर किसी बहुत ही रईस इंसान से शादी कर पाने की उसके पास कोई साधन थे। और उसने एक गरीब से क्लर्क के साथ शादी करना स्वीकार कर लिया था जो शिक्षा विभाग कार्यालय में काम करता था। वो साधारण थी पर वो दुखी थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मटिल्डा की बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी क्वालिटीज बताई गई हैं, ये सभी मटिल्डा की हैं। शी सफर्ड इनसेसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लक्जरीज। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। वो हमेशा दुखी ही रहती थी। वो महसूस किया करती थी कि उसका जन्म तो सारे तरह के टेस्टी खाने और आराम की वस्तुओं के भोग के लिए हुआ था। अपने घर की गरीबी, बदरंग दीवारें और टूटी फूटी कुर्सियों के बीच उसका दम घुटता था। ये सभी बातें उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती और इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया करता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I knew nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. जब वो खाना खाने के लिए अपने पति के साथ बैठती और उसका पति सूप के कटोरे का ढक्कन बहुत खुशी से हटाता था और कहा करता था, आह कितनी अच्छी चीज है, मैं तो इससे ज्यादा अच्छी किसी भी चीज को नहीं सोचता, तो उस समय मटिल्डा के मन में बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजों के जो कि सुंदर प्लेटों में रखी हुई हैं, उन सब के सपने मटिल्डा को आया करते थे। उसके पास ना तो फ्रॉक थे, ना ही कोई जेवरात, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो केवल उन्हीं चीजों को याद किया करती थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. उसकी एक बहुत ही रिच दोस्त थी जो कॉन्वेंट में उसके साथ पढ़ा करती थी। वो उससे मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब वो उसके यहाँ से वापस लौटती तो दुखी हो जाया करती थी। वो बहुत ही दुखी मन से सारे दिन रोती ही रहती थी जब वो अपनी फ्रेंड के घर से वापस आती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। एक शाम उसका पति हाथ में एक बड़ा लिफाफा लेकर बहुत ही खुशी से घर लौटा। Here, he said, here is something for you. उसने कहा, ये लो, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 40 पर आइए। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. The Minister of Public Instruction and Madame George Ramponeau ask the honor of Mr. and Mrs. Loisel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence. उसने जल्दी से उस लिफाफे को पकड़ा और उसमें से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला जिसमें ये शब्द लिखे हुए थे। शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रैम्पोन मिस्टर और मिसेस लॉयजल को मंत्री निवास पर सोमवार शाम 18 जनवरी को सादर आमंत्रित करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग What do you suppose I want with that? खुश होने के बजाय जैसा कि उसके पति ने आशा की थी, मैटिल्डा ने कार्ड को बहुत ही घृणा से मेज पर फेंक दिया और बड़बड़ाई, मैं इस कार्ड को लेकर क्या करूं? But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion. And a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. फिर समझाते हुए मैटिल्डा के हस्बैंड ने कहा, लेकिन डियर, मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हें खुशी होगी, तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये एक सुंदर अवसर है। हर इंसान इसे पाने के लिए तरसता है और इसमें कुछ गिने चुने लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। कर्मचारियों में से केवल कुछ एक को ही ये कार्ड दिए गए हैं। वहां पर तुम सारे ऑफिशियल से मिल सकोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, What do you suppose I have to wear? To such a thing as that. मैटिल्डा ने अपने हस्बैंड की ओर खींच कर देखा और बहुत ही अधीरता के साथ बोली, आप क्या सोचते हैं कि पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं? He had not thought of that. He stammered. Why, the dresses you wear when we go to theatre, it seems very pretty to me. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, What is the matter? What is the matter? मैटिल्डा के पति ने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वो हकलाया। उसने कहा, क्यों वो पोशाक जिसे पहनकर हम थिएटर जाते हैं, वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर चुप निराश खड़ा रहा। वो लड़खड़ाते हुए बोला, आखिर क्या बात है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair.
give your car to some colleagues whose wife is better fitted out than I.
काफी कोशिश के बाद उसने अपनी नाराजगी पर नियंत्रण किया और अपने गीले गालों को पोंछकर एक शांत आवाज में मैटिल्डा ने जवाब दिया। उसने कहा, कुछ नहीं, बस मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। तुम्हारा कार्ड अपने किसी ऐसे साथी को दे दो जिसकी पत्नी के पास मुझसे बेहतर कपड़े हों।
He was grieved, but answered, Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple.
वो दुखी हो गया, लेकिन उसने जवाब दिया, चलो देखते हैं मैटिल्डा, एक सही पोशाक का कितना खर्च आएगा, ऐसी पोशाक जो दूसरे ओकेशंस पर भी काम दे सके, कोई बहुत ही साधारण सी पोशाक।
She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. She finally said, in a hesitating, चलिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 41 पर आइए। वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट।
मैटिल्डा ने कुछ सेकंड तक विचार किया कि कितनी राशि बताए जाने पर उसका पति तुरंत इनकार ना कर सके, और कुछ ऐसा वो अमाउंट बता सके जो उसका पति एक्सेप्ट कर ले और उससे डर ना जाए, क्योंकि वो बहुत ही कम खर्चीला क्लर्क था। आखिर में उसने झिझक के साथ कहा, मैं सही तरीके से तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में एक सही सी ड्रेस आ जाएगी।
He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, Very well. I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress.
मैटिल्डा के हस्बैंड का रंग थोड़ी देर के लिए कुछ पीला सा पड़ गया, क्योंकि उसने ये पैसे एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखे थे, ताकि वो अगली गर्मी में शिकारी दल के अपने फ्रेंड्स के साथ शामिल होकर लाख पक्षी के शिकार पर रविवार को जा सके। तब भी उसने मैटिल्डा की बात का जवाब दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना।
रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। क्वेश्चन 1, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मिसेस लॉयसल। अब मैडम लॉयसल को अब कौन सी नई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सेकंड, हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला गया।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं।
द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लॉयसल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days.
जो बॉल पार्टी थी, उसका दिन नजदीक आ रहा था और मिसेस लॉयसल उदास थी, परेशान और थोड़ी चिंतित भी थी। वैसे उनकी ड्रेस लगभग तैयार थी, उसके पति ने एक शाम उससे कहा,
तुम्हें क्या हुआ है? तुम 2 या 3 दिन से बड़ा ही अजीब सा बिहेव कर रही हो।
And she responded,
I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party.
उसने जवाब दिया, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए कोई भी गहना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी हेल्प से मैं खुद को सजा सकूं। मैं कंगाल जैसी शक्ल में दिखाई दूंगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं पार्टी में जाऊं ही ना।
He replied, You can wear some natural flowers. In this season, they look very chic.
मटिल्डा के हस्बैंड ने जवाब दिया, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो। इस मौसम में वो बहुत फैशनेबल दिखाई देंगे।
She was not convinced.
No,
she replied.
There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women.
लेकिन मटिल्डा संतुष्ट नहीं हुई। उसने जवाब दिया, नहीं, रिच औरतों के बीच इतनी अजीब दिखाई देने से ज्यादा बेइज्जती वाली बात कोई और हो ही नहीं सकती है।
Then her husband cried out, How stupid we are! Go and find your friend, Madam Forestier, and ask her to lend you her jewels.
तब उसका पति बोला, हम भी कितने पागल हैं, अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और उनसे कुछ गहने उधार ले लो।
She uttered a cry of joy.
It is true,
she said.
I had not thought of that.
अब मैटिल्डा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, ये ठीक रहेगा, मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं।
The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, Choose, my dear.
अगले दिन मैटिल्डा अपने सहेली के घर गई और अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। मैडम फॉरेस्टियर अपने अलमीरा के पास गई और वहां से एक बड़ा सा डब्बा निकाल लाई। उसे खोला और वो बोली, इसमें से कोई भी चूज कर लो।
She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, Have you nothing more?
Mrs. Loisel ने पहले तो कंगन देखे, फिर मोतियों का एक हार देखा, फिर सोने का क्रॉस और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए हुए बाकी के गहने भी उन्होंने देखे। उन्होंने शीशे के सामने खड़ा होकर उन्हें पहनकर देखा, संकोच किया, पर ना तो वो उन्हें ले जाना चाहती थी और ना ही वो वहां पर छोड़ना चाहती थी। फिर मैटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर से पूछा, क्या तुम्हारे पास और भी गहने हैं?
Why? Yes. Look for yourself. I do not know. What will please you?
हाँ, क्यों नहीं?
तुम खुद देख लो। मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या पसंद आएगा।
ऐसा कहकर मैडम फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा को खुद ही सेलेक्ट करने को बोल दिया।
Suddenly, she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety,
"Could you lend me this? Only this?"
अचानक ही उसने काले सैटिन के बॉक्स में हीरो का एक बहुत ही सुंदर हार देखा। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने गले के चारों ओर ड्रेस के ऊपर रखकर देखा और वो खुशी से पागल हो गई। फिर उसने संकोच करते हुए पूछा,
"क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? बस यही?"
"Why? Yes, certainly."
"हाँ, जरूर,"
ऐसा मैडम फॉरेस्टियर ने उसे आंसर दिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 42 पर आइए।
She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure.
वो अपनी सहेली के गले लग गई, भावना के साथ उसे जोर से गले लगा लिया, तब अपने खजाने को लेकर वो वहां से चली गई।
The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all. Elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented.
Ball party ka din aa pahuncha. Madame Loisel बहुत ज्यादा सफल रही। वे सभी औरतों में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा एलिगेंट, ग्रेशियस और बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। सभी आदमियों की आंखें उन्हीं पर थी। उन्होंने उसका नाम पूछा और उससे मिलने की इच्छा भी जताई।
स्टूडेंट्स, तो ऐसे मैडम मैटिंडा लॉयजल की बॉल पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार रही और उसने वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया। लेकिन आगे क्या हुआ, उसे जानने के लिए हम नेक्स्ट लेसन में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ तक की सारी स्टोरी को पढ़कर आना है।
चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।